सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की कृपा से अमल होगा। विचार कर रहे थे कि उस ज्ञानी की जो प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये किस प्रकार से नहीं बनती है, इस विषय में क्या हम लोग चर्चा कर रहे थे। कल बहुत लोगों को मेरे ख्याल से समझ में नहीं आया होगा, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए उसको दोबारा और सरल करके मैं बताना चाहूंगा। देखिए, ज्ञानी की जो प्रवृत्ति और निवृत्ति है, वो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों क्या है, प्रवृत्ति और निवृत्ति का उपयोग है। निवृत्ति का उपयोग बोध में है और प्रवृत्ति का उपयोग बोध होने में है, अर्थात जो बोध साक्षात्कार जिसको कहते हैं, अपने स्वरूप को, स्वरूप का अनुभव। तो ज्ञानी के लिए क्या है, बोध के लिए निवृत्ति हेतु बनता है, और जो साधक है उसके लिए ज्ञान होने के लिए प्रवृत्ति हेतु बनता है। जैसे साधक किस में प्रवृत्त होगा, श्रवण मनन निधिध्यासन में प्रवृत्त होगा, और ज्ञानी को पूर्ण रूपेण परोक्ष ज्ञान हो गया। अपरोक्ष ज्ञान होने के बाद अर्थात उसके सभी संशय मिट गए, सभी संशय मिटने के बाद अब उसको इन सभी से निवृत्त हुए बिना क्या बोध नहीं होगा, अर्थात अनुभूति जिसको कहते हैं, अपने स्वरूप में जो स्थिति है, बोध है, वो बोध निवृत्ति से होता है। अर्थात ज्ञान आने के लिए प्रवृत्ति है, और उस ज्ञान को क्या है, अपने रूप में अनुभव करने के लिए, उस आत्मज्ञान को अपने रूप में अनुभव करने के लिए क्या चाहिए, निवृत्ति चाहिए। उसी निवृत्ति और प्रवृत्ति को लेकर के क्या है, यहां पर शास्त्रार्थ कर रहे हैं। तो एक बार बोध हो गया तो उसके बाद फिर दोबारा जानने के लिए क्या है, प्रवृत्ति ज्ञानी की नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि उस ज्ञानी का जो ज्ञान, ज्ञानी जो होता है, वो उसमें जो है, जो पुनर्बोध है जिसको बोलते हैं, दोबारा ज्ञान जिसको बोला जाता है, एक बार ज्ञान हो गया फिर दोबारा ज्ञान का उसमें अभाव होता है, अर्थात दोबारा ज्ञान वो नहीं होता, क्योंकि वस्तु एक है, उस वस्तु एक वस्तु का ज्ञान जो है एक बार ही क्या है, होता है, फिर दोबारा बार बार ज्ञान उसका अर्जित करना होता नहीं है। तो जो पुनर्बोध का अभाव है, दोबारा जो जानने की जिज्ञासा है ना, अथवा मैं दोबारा मैं जानू उसी को, ऐसा होता नहीं है। लोक व्यवहार में जिसको एक बार हमने जान लिया उसी को मैं दोबारा जानू, ऐसा होता नहीं है। एक बार जान लिया, जान लिया। इसलिए ज्ञानी के लिए निवृत्ति का भी कोई उपयोग होता नहीं है। निवृत्ति किसके लिए थी, ज्ञान होने के लिए निवृत्ति थी। अब ज्ञान हो गया फिर दोबारा उसी ज्ञान के लिए फिर दोबारा निवृत्ति करे, ऐसा होता नहीं है। एक बार ज्ञान आ गया, आ गया, आने के बाद उसी ज्ञान के लिए जो निवृत्ति की थी उन्होंने, वो निवृत्ति फिर दोबारा निवृत्ति होती नहीं है, अर्थात निवृत्ति का कोई उपयोग नहीं है। निवृत्ति का उपयोग एक ही बार है, क्या उपयोग है, हो ज्ञान होना, बोध होना। बोध हो गया निवृत्ति के कारण, उसके बाद फिर दोबारा निवृत्ति का कोई उपयोग, कोई मतलब नहीं होता।
ज्ञान होने के बाद दोबारा जरूर नहीं,
दोबारा निवृत्त होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसके लिए निवृत्त होना तो वो तो आ गए ना हमारे पास, इसलिए फिर दोबारा किसकी निवृत्ति करेंगे? निवृत्ति करने की कोई जरूरत नहीं है। बोध के लिए निवृत्ति थी इसलिए बोध आ गया, इसलिए अब क्या हो गया, अब दोबारा निवृत्ति नहीं होगी। और निवृत्ति होगी तो क्या है, आरोपी होगी, कोई मतलब नहीं उस निवृत्ति का। तो फिर कहेंगे चलिए मान लीजिए ज्ञान आ गया, ज्ञान हो गया आपको, तो उसकी स्थिरता के लिए निवृत्त होना चाहिए आपको। क्या है, ज्ञान हमें हो गया, जिस निवृत्ति के कारण ज्ञान हो गया, उस ज्ञान को स्थिर करने के लिए क्या करना चाहिए, निवृत्त जो है अभ्यास करना चाहिए, जो ज्ञान है उसका स्थिरता के लिए निवृत्ति की अपेक्षा होनी चाहिए। एक बार ज्ञान आ गया वो स्थिर रहे हमारे भीतर, इसके लिए निवृत्ति होनी चाहिए। ऐसा कोई कहे तो कहते हैं यहां पर ज्ञान की स्थिरता में निवृत्ति कारण नहीं है। ज्ञान स्थिर कब नहीं रहेगा, यदि ज्ञान का कोई बाधक हो। क्या है, ज्ञान स्थिर कब नहीं रहेगा, यदि उस ज्ञान का कोई बाधक हो तब ज्ञान स्थिर नहीं रहेगा। किंतु यहां पर ज्ञान का क्या है, बाधक का अभाव है। ज्ञानी में जो ज्ञान है उस ज्ञान का, वो ज्ञान जो ज्ञानी में स्थिर है, वो ज्ञान ज्ञानी में जो ज्ञान स्थिर है उस स्थिरता का कारण बार बार निवृत्ति नहीं है। ज्ञानी में जो ज्ञान है उस ज्ञान का, ज्ञान की स्थिरता का कारण बाधक अभाव है, अर्थात उस ज्ञान को बाध करने वाला कोई है नहीं है, इसलिए ज्ञानी में जो ज्ञान है वह स्थिर है। इसलिए उसकी स्थिरता के लिए बार बार निवृत्त होने की कोई जरूरत नहीं है। निवृत्ति तो एक ही बार के लिए, ज्ञान होने के लिए। ज्ञान हो गया, अब वो ज्ञान उसमें स्थित क्यों है, क्योंकि उस ज्ञान को हटाने वाला कोई बाधक नहीं है, इसलिए निवृत्ति बार बार नहीं होती है। अच्छा, वो ज्ञान स्थिर क्यों होता है, वो स्थिर क्यों है ज्ञान, वो ज्ञान स्थिर इसलिए है क्योंकि वो वेद रूप प्रमाण से, प्रमाण के द्वारा क्या है, जनित है वो, और वेद रूप प्रमाण सबसे बड़ा बलवान प्रमाण है, और बलवान प्रमाण से उत्पन्न हुआ ज्ञान, वो ज्ञान कैसा है, स्थिर ही रहेगा, वो बाध कभी होगा नहीं। बाकी अन्य प्रमाणों के द्वारा उत्पन्न होने वाला ज्ञान हो सकता है बाध हो जाएगा, किंतु वेद के द्वारा उत्पन्न हुआ ज्ञान कभी बाध होता नहीं है। इसलिए क्या है, वहां पर निवृत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। किसको, ज्ञानी को बार बार निवृत्ति की आवश्यकता नहीं है, और साधनांतर की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अपने ज्ञान को स्थिर करने के लिए और कोई साधनांतर की भी वहां पर जरूरत नहीं है, किसी अनुष्ठान में प्रवृत्ति की भी कोई जरूरत नहीं है। इतना होने के बाद तब भी एक शंका हो जाती है। क्या शंका होती है कि भाई प्रमाण के द्वारा हमने क्या किया, शास्त्र वेद प्रमाण के द्वारा ज्ञान को हमने अर्जित किया, पक्का किया, तो अन्य जो प्रमाण है प्रमाणांतर से, तो कहते हैं कि प्रमाणांतर से भले ही बाध न हो, किसका, ज्ञान का, ज्ञान आ गया, ज्ञान आने के बाद उसका बाध किसी प्रमाणांतर से भले ही न हो, कोई बात नहीं, ठीक है, हम मान लेते हैं आप ज्ञान आपका स्थिर है, किंतु जो अविद्या और अविद्या का जो कार्य वो तो अभी उपस्थित है ना। क्या है, अविद्या, अविद्या का कार्य वो उपस्थित है, इसलिए उसके कारण हमारे भीतर कर्तृत्व भाव आएगा, और वो कर्तृत्व भाव के कारण क्या हो जाएगा, हमारा ज्ञान बाधित होने की संभावना होनी चाहिए। ज्ञानी का जो ज्ञान है वो बाधित होना चाहिए। हाँ, बाधित होना चाहिए। तो उसका उत्तर ये है कि जो अविद्या है एक बार क्या किया है, बाधित हो चुकी है, वो फिर दोबारा उसके अज्ञान को नष्ट नहीं कर सकती। जो मरी हुई अविद्या है वो क्या मारेगी ज्ञान को। इसी को लेकर के 78वां श्लोक बता रहा था कि जो अविद्या क्या है, अविद्या भी उस ज्ञान को बाधित नहीं कर सकती और अविद्या का कार्य भी ज्ञान को बाधित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ज्ञान के द्वारा दोनों का बाध किया है। एक तो सबसे बड़ी बात है, अविद्या को नष्ट कर दिया, किंतु अविद्या का जो कार्य शरीर है, ये जगत है, ये नष्ट नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए पुत्र पिता का कार्य है, पिता तो चले गए, पुत्र है, पिता का कार्य कौन है, पुत्र। इसी तरह अविद्या का कार्य कौन है, शरीर। जो हमारे भीतर पूर्व अविद्या थी, उस अविद्या के कारण उस अविद्या का परिणाम रूपी शरीर आ गया है ना। और इस शरीर के साथ जो भी था, शरीर के लिए अनुकूल वस्तुएं उस अविद्या ने निर्माण करके रखी थी, क्योंकि इस अविद्या ने शरीर को निर्माण किया, अविद्या के कारण शरीर आ गया। आ गया तो अब शरीर तो है ना, अविद्या का कार्य। तो उस अविद्या के कार्य के द्वारा फिर कर्तृत्व भाव आएगा क्या नहीं, ऐसे उनके मन में शंका है। यदि कर्तृत्व आएगा तो ज्ञान बाध हो जाएगा। तो कहते ऐसा नहीं है, उसके विषय में जो है 79 श्लोक में बता, पीछे का दोहरा रहा हूं, जो कल ठीक से समझ नहीं आया उसका बता रहे। तो यही उनको कहना है, अविद्या का कार्य अभी है, अविद्या का कार्य होने के कारण ज्ञान को क्या है, झटका लग सकता है, ज्ञान बाधित हो सकता है। इसके लिए उन्होंने इस श्लोक में बताया, जो जिसका बाध हुआ, अर्थात जिसके विषय में, जिस जगत के विषय में, शरीर के विषय में क्या है, मिथ्यात्व निश्चय हो गया, वो भले ही नजर आ गए कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमने मिथ्या सिद्ध किया। अब सिद्ध होने के बाद भले ही नजर आवे, हमें दिखने दीजिए कोई बात नहीं, दिखने मात्र से हमारा ज्ञान बाधित नहीं होता है। जैसे सीपी में हमें क्या हो गया, बोध हो गया कि ये चांदी नहीं है, ये क्या है, सीपी है। ये सीपी जो बोध है, ये बोध है होने के बाद सीपी तो नहीं गई ना, सीपी में जो चांदी का जो चांदी दिख रही, वो चांदी भी गई क्या, अभी भी चांदी दिख रही है। हाँ, तो वो ज्ञान जो है, वो ज्ञान का जो नजर आने वाला जो चांदी, वो ज्ञान को बाध नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो मर चुका है हमारे ज्ञान के द्वारा। क्या है, चांदी का ज्ञान मर चुका है, अब वो चांदी नहीं है। उसमें जो अज्ञान था वो अज्ञान चला गया, और अज्ञान का कार्य अभी भी है, चांदी दिख रही है। वो दिखना ये सीपी है, इस ज्ञान को बाधित नहीं करेगा। अब यहां उन्होंने दृष्टांत क्या दिया, मार्जर का और चूहे का। वो चूहा, जीवित चूहा क्या है, बिल्ली को कुछ नहीं कर पाया, बिल्ली को, तो मरा हुआ चूहा क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। अब यहां चूहा क्या लेना है, मरा हुआ चूहा और जीवित चूहा क्या है। अब जीवित चूहा क्या है, अविद्या है, अर्थात जीवित अविद्या क्या है, जीवित अविद्या। और मरा हुआ चूहा क्या है, मरी भी अविद्या। तो कहते हैं जिस समय में हमें परोक्ष ज्ञान हो गया, अब हम आप लोगों में घटाइए, वो आपको जल से पकड़ में आएगा। अब हम लोगों को परोक्ष ज्ञान हुआ क्या नहीं, परोक्ष ज्ञान हो गया। अच्छा, परोक्ष ज्ञान हो गया, तो परोक्ष ज्ञान होने के बाद हमें उस अविद्या का कार्य, क्या हमें हमारे परोक्ष ज्ञान को नष्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। हमारा परोक्ष ज्ञान उसके साथ मुकाबला कर रहा है, अर्थात हमारा परोक्ष ज्ञान वो अविद्या का कार्य क्या, विपरीत भावना करवाना, विपरीत दिखाना, उल्टा कराना हमारे द्वारा, वो हमारा जो परोक्ष ज्ञान वो करने दे रहा है विपरीत। हमारा जो परोक्ष ज्ञान हमें गलत मार्ग से क्या कर रहा है, बचा रहा है। अच्छा, परोक्ष ज्ञान होने मात्र से अविद्या हटी नहीं है, अविद्या अभी भी है। हमारा परोक्ष ज्ञान उस अविद्या के साथ मुकाबला कर रहा है, अर्थात वो जीवित है, उसके साथ मुकाबला कर, वो अविद्या का कर रही है, हमें संसार की ओर ले जाना चाह रही है। और हमारा परोक्ष ज्ञान क्या कह रहा है, अरे नहीं, शास्त्र तो ऐसा कह रहा है और हमें कुछ अनुभव भी थोड़ा थोड़ा हुआ है, युक्ति भी बता रही है। तो अनुभव, युक्ति और शास्त्र प्रमाण, इनके द्वारा जो हमें परोक्ष ज्ञान हुआ है, वो परोक्ष ज्ञान हमें अविद्या जो हमें करवा रही है उसको कर रहे क्या? वो जबरदस्ती करवाना चाहते किंतु हम नहीं करने दे रहे, क्योंकि हमारे भीतर अभी क्या है, परोक्ष ज्ञान है। वो परोक्ष ज्ञान जीवित अविद्या को चलने नहीं दे रहा, उसको जो है जीवित अविद्या के साथ लड़ रहा है। हमारा जो परोक्ष ज्ञान है ना, उस जीवित अविद्या के साथ लड़ रहा है। तो इनका ये कहना है, जब परोक्ष ज्ञान जब था किसको, उस साधक को, उस समय में जीवित अविद्या उसको कर नहीं पाई कुछ, तो जब उसको परोक्ष अपरोक्ष जब ज्ञान हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, अविद्या मर गई, समझ गए ना? तो वो मरी भी अविद्या क्या करेगी, उस साधक को कुछ नहीं कर सकती, अर्थात उसके ज्ञान को मरी भी अविद्या कुछ भी नहीं कर सकती, उसके भीतर विपरीत भावों को भर नहीं सकती, विपरीत भावनाओं को उत्पन्न नहीं कर सकती। ये इनका क्या कहना है। तो जीवित चूहा का मतलब क्या है, जीवित अविद्या, और मरा हुआ चूहा का मतलब क्या है, मरी हुई अविद्या, अथवा कहिए कि उसका कार्य। जब कारण नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, तो कार्य भी खत्म ही हो गया, क्योंकि कार्य के प्रति मिथ्या तो भाव हो गया है। इसलिए परोक्षावस्था में जो जीवित अविद्या है, वो जीवित अविद्या जब साधक को कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि वो स्वामी हमेशा सावधान रहता है, वो हमेशा परोक्ष ज्ञान को क्या करता है, अपने पास बनाए रखने के लिए उसका पुरुषार्थ चालू रहता है, और उसी परोक्ष ज्ञान के द्वारा अविद्या के साथ लड़ता रहता है। जब लड़ते लड़ते जब वो ज्ञान समाप्त नहीं हुआ, तो उस लड़ने के बाद वो अविद्या मर गई, तो उस ज्ञान का बात कर पाएगी अविद्या, मरी हुई अविद्या नहीं कर पाएगी, यही श्लोक के द्वारा बताया। तो फिर चलिए, द्वैत तो रहेगा ना, रहने दीजिए। तो ये कहते हैं कि द्वैत होने पर भी क्या है, तत्व बोध का बाद होता नहीं है। कैसे बाद नहीं होता है तत्व बोध का, उसको आगे वाले श्लोकों के द्वारा बता रहे हैं। तो फिर आपको एक दृष्टांत दिया, पाशुपात अस्त्र से व्यक्ति मरा नहीं, तो सामान्य बाण से वो मरेगा नहीं। तो पाशुपात अस्त्र क्या है, जीवित अविद्या। क्या है पाशुपात अस्त्र, क्या है जीवित अविद्या, उससे उसकी कोई हानि नहीं हुई, उसका बोध खत्म हुआ नहीं, लड़ा वो उसके साथ। और जो सामान्य जो बाण है जिसमें कोई नोक भी लगी हुई नहीं है, लोहे की नोक भी नहीं है, वो लग गया, वो सामने भी है, वो कुछ कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो मरा हुआ है। अर्थात कार्य, अविद्या का कार्य हो गया ये निष्फल बाण, अर्थात बिना नोक वाला बाण, और पाशुपात अस्त्र क्या है, जीवित अविद्या। तो जीवित अविद्या कुछ नहीं कर पाई, तो उस जीवित अविद्या का कार्य मान लीजिए क्या है, ये निष्फल बाण है, अर्थात बिना नोक वाला बाण, वो क्या है अविद्या का कार्य, वो है, वो कुछ कर पाएगा नहीं कर पाएगा, यही उन्होंने क्या है बताया। और वो कुछ करेगा इसमें कोई प्रमाण भी नहीं है, नहीं बोले नहीं है, बाण तो करेगा ना कुछ काम, तो कहते इसमें कोई प्रमाण नहीं है। क्या है, मरे भी का कोई कार्य शेष रहता है, वो कार्य क्या है किसी को प्रभावित करता है, ऐसा कहीं प्रमाण आता नहीं। इसी को, इस दृष्टांत को, इस सिद्ध अर्थ को अभी क्या है 81वें श्लोक में बताने जा रहे हैं। हाँ, दृष्टांत सिद्धम अर्थम दार्ष्टान्तिके योजयति। अब ये दृष्टांत हो गया, इस दृष्टांत को दार्ष्टान्त में घटा रहे हैं, बता रहे हो। आदाव विद्यया चित्रै, आदाव विद्यया चित्रै, स्वकार्यैर्जृम्भमाणया युद्ध्वा बोधो जयत्सोद्य, सुदृढ़ो बाध्यतां कथम्, कहते हैं आदो अविद्यया चित्रैः स्वकार्यैः जृम्भमाणाया। कहते हैं प्रथम आदि में उस अविद्या ने अपने आप को क्या है सुदृढ़ करने के लिए उसने क्या हमारे सामने फेंका, चित्र विचित्र संसार। इस चित्र विचित्र संसार को हमारे सामने डाला है, और वो चित्र विचित्र संसार के द्वारा हमारे अंदर क्या है वो अविद्या बढ़ती जा रही है। वो अविद्या अपने आप को कैसे बढ़ाती है, चित्र विचित्र संसार को हमारे सामने रख करके हमारे भीतर के अज्ञान को, अविद्या को स्वयं बढ़ा देती है। अब जैसे मान लीजिए हमारा, हम लोगों का जन्म हो गया, क्या उस समय में जब तक हमें कुछ समझ नहीं थी, उस समय मैं और मेरापन था क्या, जब हम मां का दूध पी रहे थे कोई मैं मेरा कुछ था नहीं। मतलब अविद्या मान लीजिए थी, किंतु वो अविद्या ने अपने आप को बढ़ाया नहीं हुआ, नहीं था उस समय, किंतु जैसे जैसे हम बड़े होने लगे तो वो अविद्या ने मैं और मेरा हर चीज सामने ला करके उस अविद्या ने अपने आप को क्या बढ़ा दिया किसके अंदर, हमारे भीतर। तो उसने अपने आप को मजबूत किसके द्वारा किया, चित्र विचित्र संसार सामने ला करके बढ़ा दिया। ऐसी जो अविद्या, इस अविद्या का नाश करने के लिए जो हमने, साधक ने जो अपने भीतर शास्त्र के द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया, उस ज्ञान का सतत अभ्यास करता रहा, कौन साधक, उस ज्ञान अभ्यास के द्वारा उस अविद्या को क्या कर दिया, उसने परास्त कर दिया। क्योंकि आप जिसका अभ्यास ज्यादा करोगे वो चीज आपके अंदर दृढ़ होती जाएगी, जिसका आपके जिस विषय में अभ्यास होगा वो विषय क्या हो जाएगा, हमारे भीतर मजबूत हो जाता है, उसको ताकत मिलती, पावर मिलता है। तो अब साधक ने क्या किया, आत्मज्ञान का अभ्यास करता रहा साधक, और करते 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 वो ज्ञान इतना प्रबल हो गया, तगड़ा हो गया वो ज्ञान, उस ज्ञान के सामने क्या हो गई, ये अविद्या परास्त हो गई। जब अविद्या परास्त हो गई तो अविद्या का कार्य कुछ कर पाएगा नहीं। अरे सबसे बड़ा जो पहलवान है, उस पहलवान को गिरा दिया, उस पहलवान ने जो बनाए हुए पहलवान है वो कुछ कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। कि मुख्य जिस पहलवान ने अनेकों पहलवान तैयार किए, उसी पहलवानों को हमने गिरा दिया, तो उसने तैयार किए जो छोटे पहलवान वो कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसी तरह यहां कहते हैं अविद्या ने जिसके द्वारा हमको गिराने का प्रयत्न किया था, अब उसी अविद्या को ही क्या कर दिया, ज्ञानाभ्यास से गिरा दिया। तो उस अविद्या का जो कार्य छोटे कार्य रूप में आई हुई अविद्या वो कुछ भी नहीं कर सकती। इसीलिए प्रसंग चला था ज्ञानी के लिए ज्ञान को बरकरार रखने के लिए क्या है, सतत निवृत्ति करनी चाहिए क्या नहीं। तो उन्होंने कहे, सिद्धांति ने कह दिया, बार बार निवृत्ति की कोई जरूरत नहीं है। ज्ञान एक बार आ गया वो ज्ञान वहां से हिलता नहीं है। क्यों हिलता नहीं है, क्योंकि उस ज्ञान को बाध करने के लिए कोई है ही नहीं है, उस ज्ञान को हटाने के लिए किसी का सामर्थ्य नहीं है। क्यों, जैसे प्रकाश आ गया, इस प्रकाश को हटाने का सामर्थ्य जिसमें था, प्रकाश को हटाने का सामर्थ्य वो तो चला गया, अंधकार चला गया। तो वो अंधकार जब चला ही गया तो उस प्रकाश को हटाएगा कौन, प्रकाश को हटाने का सामर्थ्य तो किसी में है नहीं, तो वो अंधकार चला गया। इसलिए कहते हैं अविद्या, वो अविद्या जब चली गई जिस ज्ञान के द्वारा, उस ज्ञान को हटाने में क्या है, दूसरे में किसी में सामर्थ्य नहीं, उस ज्ञान को हटाने के लिए किसी में सामर्थ्य नहीं है। इसलिए कहते हैं यहां पर टीका देख लीजिए, इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए कि बार बार आवृत्ति करनी चाहिए, प्रवृत्ति करनी चाहिए अथवा निवृत्ति करनी चाहिए, ये सब चीजें ज्ञानी के लिए नहीं बनती। उसके द्वारा एक ही बार प्रवृत्ति है और उसके द्वारा एक ही बार निवृत्ति है। ज्ञान होने के लिए एक बार निवृत्ति है अनुभव के रूप में, बोध के रूप में, उस समय में निवृत्ति की जरूरत है, और वो ज्ञान आने के लिए प्रवृत्ति की जरूरत है। अथवा ये कहिए, ज्ञानी के लिए निवृत्ति एक बार बनती है और साधक के लिए प्रवृत्ति एक ही बार बनती है। अब एक हम लोग अपने आप को क्या है, ज्ञान अर्जन करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, ज्ञान के लिए निकले हैं हम। अच्छा निकले तो इसका मतलब हम साधक हो गए। तो साधक जो ज्ञान में प्रवृत्त हुआ वो बार बार प्रवृत्त हो गया, एक ही बार प्रवृत्त हुआ। हम तो एक ही बार प्रवृत्त हुए हैं, ये जो हमारी प्रवृत्ति है ना, ये बार बार प्रवृत्ति नहीं, प्रवृत्ति एक ही बार है, इसलिए चल रहा है हमारा, प्रवृत्ति हो गई हमारी, प्रवृत्ति होने उस प्रवृत्ति का कार्य, ये जो रोज हम आ रहे अध्ययन कर रहे हैं, ये हमारे प्रवृत्ति का कार्य, प्रवृत्ति एक ही बार हो गई। हाँ अब बार बार प्रवृत्त नहीं है, प्रवृत्त हो चुके एक बार, अब ये क्या है फिर, रोज पढ़ना, ये प्रवृत्ति का कार्य है। तो प्रवृत्ति भी एक ही बार होगी, निवृत्ति भी एक ही बार होगी। टीका देख लीजिए, वही कह दिया, युद्धवा बोधो अजयत, अर्थात वो बोध ने क्या किया, ज्ञान ने इसके साथ अज्ञान के साथ युद्ध करके क्या उस अविद्या को जीत लिया। सो अद्य सुदृढ़ हो, वो अभ्यास करते करते जो बोध इतना सुदृढ़ हो गया, इतना मजबूत हो गया कि अब उसको कोई हटा नहीं सकता। बाध्यताम कथम, कैसा बाध होगा, और जिसको अभ्यास कर करके जिसको मजबूत बनाया वो कैसे हट सकता है, अर्थात कभी हट नहीं सकता। अभ्यास जो है, अभ्यास जो भी चीज है वो मजबूत हो जाती है, और अभ्यास के द्वारा जो चीज मजबूत हो गई है उसको कोई भी हटा नहीं सकता। फिर उसके सामने और कुछ भी चीज आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अभ्यास के द्वारा उंगलियों को हारमोनियम के ऊपर हमने इतना अभ्यास किया, इतना अभ्यास कर दिया, तो उसके लिए अब आंखों की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप चलते जाएगा, वहां पर ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है, उंगलियां चलेगी। इसी तरह एक बार ज्ञान पक्का हो गया अभ्यास करते करते, उस ज्ञान को कोई हटा नहीं सकता है। टीका देख लीजिए, आदा विधि, आदो विद्याभ्यास समय, आदो का मतलब क्या है, विद्याभ्यास के समय में। हाँ, चित्रैहि बहुविधैहि तत्कार्यैहि प्रमातृत्व भोक्तृत्व कर्तृत्वादिभिः जृम्भमानायाः विवर्धमानायाः। उसका अर्थ कर रहे हैं एक शब्द का, आदो शब्द का अर्थ क्या किया, विद्याभ्यास के समय में, जब हम ज्ञानाभ्यास कर रहे थे अपने स्वरूप का, जो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा था शास्त्र के द्वारा, रोज श्रवण मनन निधि ध्यासन के द्वारा क्या कर रहे हैं, हम अपने ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, वो ब्रह्म और मैं अलग नहीं है, एक ही है। ये जो हम बार बार अभ्यास कर रहे थे, आवृत्ति कर रहे थे, उस समय में जो अविद्या किसके द्वारा बढ़ी हुई थी, अपने आप को किसके द्वारा बढ़ाया था, चित्रैहि बहुविधैहि, चित्र मतलब चित्र विचित्र नाना, शरीर हो, धन संपत्ति, सगे संबंधी, ये जमीन जायदाद, ये चित्र विचित्र के रूप में, तत्कार्यैहि, वो किसका कार्य है, अविद्या का कार्य, तत्कार्यैहि उसका कार्य क्या है, प्रमातृत्व भोक्तृत्व कर्तृत्व। यह अविद्या क्या कर रही थी, इसके द्वारा अपने आप को बढ़ा रही थी। अप्रमातृत्व मैं जानता हूं, ये क्या है, अहंकार है ना, इसके द्वारा उस अविद्या ने क्या किया, अपने आप को बढ़ाया था हमारे भीतर। भोक्तृत्व मैं इसका भोगता हूं और कोई नहीं भोग सकता इसको, इसके द्वारा क्या, अविद्या ने अपने आप को बढ़ाया था। कर्तृत्व मैं इसका करता हूं, इसको किसी ने नहीं किया, इसका कर्ता मैं हूं, इसलिए इसका मालिक मैं हूं, तो इस कर्ता के द्वारा अविद्या ने क्या किया था, अपने आप को बढ़ाया था। जृंभमानया अर्थात विवर्धमानया, उस अविद्या ने क्या किया, अपने आप को बढ़ाया था। जृंभमानम बढ़ाना, वर्धमाना अर्थात वर्धित करना, अपने आप को उस अविद्या ने क्या, अविद्या, वो बढ़ी हुई अविद्या के, अविद्या को क्या किया, बोधो युद्धवा, बोधो मतलब ज्ञान, उस ज्ञान ने क्या, युद्ध किया उसके साथ। युद्धम कृत्वा, युद्धवा मतलब क्या, युद्ध किया। ताम आजयत, युद्ध करके उस अविद्या को क्या, जीत लिया। किसने, ज्ञान ने, जिस ज्ञान ने अविद्या को जीत लिया, वो अविद्या आप ज्ञान को कुछ कर पाएगी, जिस पहलवान ने पहलवान को जिस पटक दिया, वो पहलवान आप कुछ कर पाएगा, कुछ नहीं कर सकता। जिसने पटक दिया उसको गिरा हुआ पहलवान कभी कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह यह अविद्या को जीत लिया, अब वो अविद्या ज्ञानी को कुछ कर नहीं सकती। स एव अभ्यास पाटवेन, जिस ज्ञान के द्वारा अविद्या को पटकने दी, जीत लिया, उसी ज्ञान का अभ्यास का पाटव मतलब अत्यंत जो उसका अभ्यास किया था, उसके कारण क्या हो गया, वो ज्ञान सुदृढ़ हो गया। सुदृढ़ होने के कारण क्या कहते हैं, अद्य इदानीम क्या है, अविद्या निवृत्तौ। जैसे ही सुदृढ़ हो गया, वो अविद्या वहां से गायब ही हो गई, और जो पहलवान गिर गया वो वहां रहेगा क्या, वो तो निकल जाएगा ना, नहीं रहेगा। इसी तरह ज्ञान के द्वारा अविद्या को पटकनी मिल गई, वो अविद्या वहां से मान लीजिए हट गई, अविद्या निवृत्त हो सत्याम, अब अविद्या का कार्य तो रह ही गया। तो सत्याम निर्मलेन तत्कारेण अध्यासेन, वो अध्यास क्या है, अविद्या का कार्य है। हमें क्या अध्यास हो रहा है ना, तो वो अविद्या का कार्य है। अविद्या चली गई किंतु अविद्या का कार्य जो अध्यास, वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मूल ही चला गया उसका, तो उसका उससे आया हुआ, उसके सहारे जो आया हुआ कार्य, वो कुछ नहीं कर सकता। कथम बाध्यता, वो कैसे बात कर सकते ज्ञान का, अर्थात ज्ञान का वो बाधा नहीं कर सकते। न कथमापि बाध्येत, अर्थात वो ज्ञान उस अज्ञान का जो कार्य शरीर इत्यादि, वो उस ज्ञान को कुछ भी नहीं कर सकता। उपपादितम अर्थम श्रोतृबुद्ध्या आरोहाय रूपकेण आह। अब कहते हैं, अब ये सब समझा दिया, समझाने के बाद ये कहते हैं, आप कह रहे कि वो अविद्या मरी हुई अविद्या पड़ी है, उस अविद्या का कार्य सामने पड़ा है, ज्ञान ने उसको खत्म कर दिया, अविद्या को और अविद्या के कार्य को खत्म कर दिया, कि तो सामने तो है ना, तो इसका क्या कर रहे हैं? अब सामने पड़ा है तो उसको तो हटाना चाहिए ना, नहीं हटाएंगे तो समस्या होगी। तो कहते समस्या नहीं, उल्टी उसकी कीर्ति बढ़ेगी, किसकी? ज्ञानी की, उसका यश बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा जो है आदमी है और उसको परास्त कर दिया, परास्त करने के बाद जिसने परास्त किया तो वो जिसने परास्त किया जिसको, उसको सामने रखने से दूसरे जो कहने वाले लोग, देखने वाले लोग, वो क्या कहेंगे? देखो इतना छोटा होकर के इसको परास्त किया, सचमुच बड़ा दिमागबाज आदमी है, बहुत शक्तिशाली है, ये तो हम तो कल्पना नहीं कर सकते, अब इसको गिराएंगे। मैंने उस मरी हुई चीज को, गिरी हुई चीज को देख करके लोग क्या करते, इसका गान करते हैं, अरे तुम तो बहुत महान हो, जो कोई कर नहीं सकता वो आपने करके दिखाया, आप महान हो, स्तुति करने योग्य हो जाता है। मतलब वो वस्तु रहने पर भी क्या है, उसका यश है, वस्तु हटाने की कोई जरूरत नहीं है, वो रहने पर कोई दिक्कत नहीं, वो वस्तु रहने पर उल्टी क्या होती, उसकी कीर्ति होती है। यही तो हम कहते हैं महापुरुषों, कोई मिलते महाराज हम लोग जो है कुछ नहीं कर सकते, कमाल है, आपने सब संसार छोड़ दिया, इस संसार का बात किया, अपने अज्ञान का बात कर दिया, अपने अविद्या को नष्ट किया, अपने ज्ञान प्राप्त किया, आप धन्य हैं। उसके पास हर चीज पड़ी है, ज्ञानी के पास, अब वो चीज कैसी है? मरी पड़ी हुई है। महाराज आपका इतना वैभव होने पर भी आप उसमें उसके साथ कोई लेप आपका नहीं है, आपकी कोई आसक्ति नहीं है, निरासक्त है आप। मतलब वस्तु है, उन वस्तु के प्रति, वो वस्तु क्या हुई उनके लिए? मरी हुई है। वो ज्ञान के कारण क्या है? वो वस्तु मरी है, वो वस्तु वहां से हटी नहीं है, कि तो न हटने पर भी वो वस्तु के कारण ही क्या हो रहा है, उसका यश बढ़ रहा है। नहीं तो मान लीजिए उस साधु के पास, उस ज्ञानी के पास मान लो कुछ नहीं है, तो उनको कोई कहेगा क्या? अरे आप बड़े विरक्त है, आप ज्ञानी है, आप निरासक्त है, क्योंकि वस्तु ही नहीं उसके पास है, तो आप निरासक्त है विरक्त है कैसे कह पाएंगे? वस्तु होते हुए भी उसका भोग नहीं कर रहा है, तब उसको क्या कहा जाएगा? अरे आप बड़े विरक्त हैं, वस्तु होते भी आप जो उसका उपभोग नहीं करते, सचमुच आप महान है, विरक्त है, आपके भीतर क्या है? वैराग्य है। तो कहते ज्ञानी के सामने वस्तु जो, जिस अविद्या को उन्होंने समाप्त किया, अविद्या का कार्य जो प्रपंच था, उस अविद्या ने क्या है चारों ओर क्या उसको अपने में फंसाने के लिए क्या है बढ़िया बढ़िया चीजें सामने ला करके रखी थी। ये लीजिए धन संपत्ति लीजिए, जैसे मान लीजिए प्रेमपुरी महाराज है, अखंडानंद जी महाराज है, अब उनका उनके सामने अविद्या ने ही सब प्रपंच खड़ा किया नहीं, वो अविद्या ने सोचा होगा कि चलो इसको ये चीज देंगे तो ये मेरे में फंस जाएगा, किंतु वो फंसे नहीं है, उस अविद्या को क्या कर दिया उन्होंने? खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद ही जो अविद्या का कार्य और अविद्या मरी हुई अविद्या वो उनको क्या है प्रभावित नहीं कर पाई, और उसका परिणाम ये हो गया, ये जो कार्य इसी कार्य के द्वारा उनकी स्तुति हो रही है, उनका यश बढ़ रहा है। देखिए इतना बना करके भी इससे निर्लिप्त रहे, कोई इसमें कोई आसक्ति नहीं रही, तो उसका हमने गान किया ना, और आज तक गान करते जा रहे, वो चले भी गए तत्पर ही उनका क्या है गान हो रहा है, यश अभी भी हम गा रहे, उनका यश बढ़ गया उल्टा, ये न होता तो इनका यश का कोई गान नहीं करता। तो कहते हैं ये भी क्या है, साधक ही है उसके लिए, जो मरा हुआ अविद्या और उस कार्य अविद्या का वो सामने है तो कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा उसके द्वारा यश बढ़ता है उसका, उसी को समझाने जा रहा है। तिष्ठन् त्व ज्ञान तत्कार्य, तिष्ठन् त्व ज्ञान तत्कार्य, शवाबोधेन मारिता, शवाबोधेन मारिता, न भीतिर्बोध सम्राज, न भीतिर्बोध सम्राज, कीर्ति प्रत्युत तस्य तै, कीर्ति प्रत्युत तस्य तै। कहते हैं तिष्ठन्तु अज्ञान तत्कार्य, कोई बात नहीं, ज्ञान होने के बाद भी मरी हुई अविद्या रहे, उस मरी हुई अविद्या का कार्य भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, वो शव है ना। अब तो मरी हुई अविद्या का मतलब क्या, अब शव है और उसका एक कार्य भी है, और किसके द्वारा मारा, बोधे न मारिता, बोध के द्वारा उसको मार दिया, और मारने के बाद वो हमारे सामना पड़ा रहे, कोई बात नहीं है, पड़े रहने से कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा क्या है, लाभ है। किसका लाभ है, ज्ञानी का लाभ है। अच्छा, ज्ञानी का मात्र लाभ है क्या, नहीं, उस ज्ञानी के साथ जुड़ी हुई अज्ञानी उनका भी लाभ है। अब ये मरी हुई अविद्या है ना, प्रेमपुरी आश्रम ये जो ट्रस्ट है, ये बना हुआ इतना मकान है, ये उन्होंने तैयार किया था, वो अविद्या ने उनको घेरने के लिए कोशिश की, परंतु इसमें घेरे नहीं है। अब उनका तो यश बढ़ गया, और जो मरा हुआ कार्य है उसका उपयोग हमारे लिए हो रहा है कि नहीं, अरे हम यहां आकर बैठ रहे, सुन रहे, ये मरा हुआ कार्य है ना उनका, उस मरे हुए कार्य से हमें उपयोग हो रहा है कि नहीं, हो रहा है, उसका यश बढ़ गया और उसका उपयोग हमें भी हो रहा है, तो दिक्कत क्या है, उसको हटाने की जरूरत नहीं है, रहने दीजिए, दूसरा उसका उपयोग ले लेंगे और उनका यश बढ़ता जाएगा। न भीति ही, उनको कोई डर नहीं है। बोध सम्राज अर्थात ज्ञान रूपी राजा, उसकी क्या हो जाएगी, कीर्ति हो जाएगी, कीर्ति ही प्रत्युत तस्य तय, उल्टा उसकी कीर्ति हो जाएगी। तिष्ठन्तु इति, समझ में आया ना कि अविद्या और अविद्या का कार्य सामने पड़ा रहने पर भी कोई दिक्कत नहीं है ज्ञानी को, उसकी उल्टी उसका यश बढ़ता है, उसका भूषण है और दूसरी के लिए उसका उपयोग भी है। भवतु एवं प्रकृते है किम आयातम, चलिए आपने मान लिया यश बढ़ता है, ये सब बढ़ता है, ठीक है, इसे आया क्या, इसे अतिरिक्त तो भी कोई लाभ है क्या, प्रकृते है किम आयातम, इसे क्या सिद्ध किया आपने, भवतु एवं, ठीक है ये बात ठीक है, उसका यश बढ़ गया इतना ठीक है, पर इससे और क्या आ गया, प्रकृति है किम आया तम, इससे क्या आया, क्या सिद्ध हो रहा है, आह तो कहता है य एवं अतिशूरेण, य एवं अतिशूरेण बोधेन न युज्यते, बोधेन न वियुज्यते, प्रवृत्त्या वा निवृत्त्या वा, प्रवृत्त्या वा निवृत्त्या वा, देहादिगतयास्य किम्, देहादिगतयास्य किम्। चलिए इसके विषय में हम लोग कल चर्चा करते हैं। हरि ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।